माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धाम जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धाम हरि यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा हवन चाहरि यमुना तेरा हवन चाहरि जय राधमाधव कुंज बिहारि जय राधमाधव कुंज बिहारि जय राधमाधव कुंज बिहारि जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धाम हरि जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धाम हरि यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा हवन चाहरि यमुना तेरा हवन चाहरि जय राधमाधव कुंज बिहारि जय राधमाधव कुंज बिहारि जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धाम हरि जय गोपी जन बल्लभ ग्रीव रघ हरि यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा हवन चौहरी यमुना तेरा हवन चौहरी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा रामन राधा रामन राधे जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा गिरि दधि राधा गिरि दधि राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Vishnupad, Paramahamsa Virgachaya Sota Sota Shishamad, Shilai Si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnupad, Paramahamsa Virgachaya Sota Sota Shishamad, Shila Bhakti Siddhanta Sasthakur Gosan Srila Prabhupada Ki. Ananta Kodi Vaishnavarinda Ki. Jai Si Rup Si Sanatan Vattaraganachi Jeev Gopala Vattara Saraganat Sarga Swami Prabhu Ki. Prem se ko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Syadaita Gadadhar Shiva Jari Gora Bhakti Varinda Ki. Shri Radha Krishna Gopagubina Cham Kundra Radha Kanda Giri Gavadana Ki. Shri Varinama Dham Ki. Shri Mathura Dham Ki. Shri Mayapanavi Dham Ki. Shri Jagannapuri Dham Ki. Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki. Ganga Yomuna Devi Ki. Harinam Sankirtan Yagya Ki. Shri Gonitai Ki. Shri Krishna Balaram Ki, Shri Radha Shama Sundar Ki, Granthraj Mad Bhagavatam Ki, Go Premanande Hari Hari Bo, Samaveda Bhakti Vrinda Ki, O glories to the assembled devotees, O glories to the assembled devotees, O glories to Shri Guru and Shri Guranga, O glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet nashtapayesha badayesho nityam bhagavata sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. So, we are Srimad Bhagavatam se par rahe hain Chota Skand Adhyay 21 और श्लोक 31 यत पादं सेवा अभिरुचि तपस्विनम अशेष जन्म उपाचेतम मलम धिया साध्या क्षिणोति अन्वहम एदति सति यथा पाद अंगुष्टा विनिश्रिता सरित यत्पाद सेवा अभिरुचिस्तपस्विनम् अशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्या क्षिणोत्यन्वहमेदाति सति यथा पदङ्गुष्ठविनिसृता सरेत् यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनम् अशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्या क्षिणोत्यन्वहमेदाति सति यथा पदङ्गुष्ठविनिसृता सरेत् यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनम् अशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्या क्षिणोत्यन्वहम् एदति सति यथा पदङ्गुष्ठविनिसृतसरेत् बोलिए मतय कोई ना है? कोई मत जी ना है? यत्पाद जिनके चरण कमल की सेवा सेवा अभिरुचि रुचि तपस्वी नाम कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति अशेष असंख्य जन्म जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं मलम गंदगी धिया मन सद्य शीघ्र क्षिणोती नाश करता है अन्वहम प्रतिदिन एदति बढ़ने वाली सती होते हुए यथा जिस प्रकार पद अंगुष्ठा चरण कमलों के अंगूठे से विनिश्रिता निकाला शरीर जल अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मनों में असंख्य जन्मों से संचित माल को शीघ्र ही धो सकता है। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकालने वाला गंगा जाल सब मालों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विकास होता है। तत्पर्य भरत में यह देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वो समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कोलकाता के एक अत्यंत सामान्य ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं कर बीमार पाने पर वो केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ते के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती है तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे परम स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की इतनी महिमा है क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से वंचित सारे मल दूर हो जाता है। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनका विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहा है, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धूल गया है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। अतः प्रीतु महाराज उपदेश देता है कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वो तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके पूर्ण मनुष्य बनाना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। क्षिप्रम भवदीदारमात्मा सत सत चिम निगच्छति। एक उत्तरदायी राजा होने के कारण ही प्रीतु महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहता है कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्य के सारे पाप कर्म दूर हो जाता है। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्म को दूर कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हार लेता है। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए नियमों का पालन करता है तो वो शुद्ध रहता है और भौतिक कलमाश से दूषित नहीं होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु को जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों का समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत हो स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाया जाए। ओम अज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं इदं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददति सा पदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवजरि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनम् अशेषजन्मोपचितं मलं धियः सद्याक्षिणोत्यन्वहमेतति सति यथापदुङ्गुष्टा विनिसृतसारित। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मनों में असंख्य जन्मों के संचित मल को शीघ्र ही धो सकता है। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकालने वाला गंगा जाल सब मालों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो ये महाराज पृथु के बहुत सुंदर उपदेश है इस अध्याय में। और तो कहता है जैसे पिछले श्लोक में भी कि ये सिर्फ मेरी मत नहीं है, लेकिन जो महाजन जो है, जो महापुरुष है, ये उनकी मत है। और शास्त्र के अनुसार तो महाजान ये ना गता सपंतहा कि हमको महाजान के अनुगत्य में हमको चलना है। और गुरुजान जो है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, ये भी तो अपने मत के अनुसार नहीं बताता है, लेकिन जो गुमराज ने बताया उनके इसके अनुसार चलता है और खुद बताता है। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी तो जैसे यहाँ पर लिखा है महाजान, यहाँ पर कहता है पृथु महाराज, इसमें तो मानु स्वयंभू मानु उत्तनपाद ध्रुव महाराज प्रियव्रत और उनके पितामह अंगा और प्रहलाद और बाली महाराज, ये सब महापुरुष है और उनके अनुगत्य में हमको चलना है। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है दस महाभागवत है, और जैसे इसमें भी लिखा है यमराज खुद और शिव जी है और भीष्मदेव विदुर जी है जनक महाराज और इत्यादि, तो उनके अनुगत्य में हम जो चलना है सब कुछ करना है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो हमारे गुरुजान के अनुसार करता है, प्रभुपाद के अनुसार, उनके गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विशेष करके ये छह गोस्वामियाँ रूप सनातन और रघुनाथ दास, रघुनाथ बाता, गोपाल बातो जीवो स्वामी, ये हमारे लिए वास्तविक महाजान ये है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो नित्य सिद्ध परिकार जो है और विशेष करके इनमें से भी हम रूप को स्वामी के अनुगत्य में चलता है, तो इसलिए प्रभुपाद भी मंगलाचरण में सबसे पहले तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता है ओम अज्ञान तिमरन दस्या के द्वारा, और इसके बाद श्री चैतन्य मनोभिष्टाम ये रूप गोस्वामी के प्रणाम एक मंत्र है तो को स्मरण करके मंगलाचरण को चरण करता है। और सब जो महापुरुष जो है महाजान जो है ये एक ही बात कहता है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सेवा करना ही चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके बहुत सुंदर रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन हमको करना चाहिए। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम आचनम वंदनम दस्यम सत्यम आत्मनिवेदनम नवविध भक्ति, तो सबसे पहले भगवान के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए और गुरुजान के मुखरविंद से ऐसे करते हुए हम अच्छे तरह से जप कर सकता है, हम सेवा कर सकता है। और इसके बाद भी जो हमने सुना है ये इसका भी तो कीर्तन कर सकता है। तो सबसे पहले श्रवण हमको सुनना चाहिए गुरुजान से, इसके बाद तो भजन करना ही है, भगवान की सेवा करना चाहिए और शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर भी प्रीतु महाराज कहता है कि तो वान आश्रम जो है ये धर्म है, वान आश्रम धर्म के अनुसार भी हमको चलना चाहिए, हर व्यक्ति एक आश्रम में होना चाहिए और एक वर्ण में होना चाहिए। चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, और वर्ण है शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। लेकिन हमेशा इस भाव से कि हम कृष्ण के नित्य दास है, जिबेर सोपोय कृष्णेर नित्य दास, और इस जो वानाश्रम जो है इस माध्यम से हम सेवा करते हैं, सेवा कर सकता है, लेकिन कृष्ण हमेशा केंद्र में होना चाहिए और हमेशा समझना चाहिए कि हम कृष्ण के दास है और दास के दास है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी बोला कि नाम विप्रो न चा नर पदीय नी वैष्णव न शूद्रो नाम वर्णनाचक पदीय न वर सत्यरवा किंतु प्रोद्या निकल प्रमानंद पुनमृप्त देर गोपी बात पर कमरो दास दास अनुदास। तो श्री चैतन्य महाभगवान है, श्री राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहायान्या राधा भाव द्युति सवितम नौमी कृष्णा स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है लेकिन श्रीमती राधारानी का भाव द्युति लेकर आया है राधारानी का भाव का रस स्मरण करने के लिए, लेकिन युग धर्म स्थापित करने के लिए भी आया है, ब्रज भक्ति देने के लिए आया है, हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना चाहिए। और ये भी तो महाप्रभु कहता है कि तो और ये तो लीला में भी और ऐसा ही है कि ये ब्राह्मण कुल क्या है, द्विज शिरोमणि है, उनके पिताजी ब्राह्मण थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, तो ब्राह्मणत्या गृहस्थ थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमको दिखाने के लिए कि किस भाव से हमको रहना चाहिए कहता है, मैं तो ब्राह्मणा या क्षत्रिय या गृहस्था सन्यासी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण के दास के दास के दास हूँ। तो इस भाव से हमको साधन भजन करना चाहिए, इसमें लीन होना चाहिए। और यहाँ पर श्लोक तो बहुत सुंदर उदाहरण देता है कि ये जब कोई भगवान की सेवा करता है, जो कलमाश जो दिल में है, जो माल जो दिल में है, जो असंख्य साल से हम इस भौतिक जगत में है, तो इसलिए मन भावना कलुषित है, दिल साफ नहीं है, भावना साफ नहीं है, इसलिए दोना है चेत उदार परमार्जनम। चित्त जो है, भावना जो है, हमको दोना है, क्योंकि सपनाएं है, बहुत कलमाश है, और कीर्तन के द्वारा भगवान की सेवा के द्वारा भावना शुद्ध हो जाती है। इसके बाद भगवान का साक्षात दर्शन मिल सकता है और अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं और कृष्ण के साथ संबंध। लेकिन इसलिए तो हमको हमेशा इसमें लीन होना चाहिए, तन मन वाचा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए निरंतर। सिर्फ कोई सोचता है ठीक है मेरे तो काम है, मुझे पैसे कमाना है, तो सुबह 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा भगवान की सेवा करूँगा और शाम को भी 10-15 मिनट, ये तो पर्याप्त नहीं है। वास्तव में निरंतर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और सब इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गृहस्थ है तो वाण के अनुसार कुछ करना है, लेकिन भजन अच्छा तरह से करना है। ऐसा करते हुए हम शुद्ध वस्त्र पर पहुंच सकते, रह सकता है। और जैसे अगर शीशा है और जैसे ये जमीन जो है, जिसे मंदिर के अंदर और घर के अंदर रोज रोज झाड़ू पोंछा लगाना है, तो एक दिन तो हर दिन और दो दिन तीन दिन नहीं करता है तो धूल फिर से आ जाता है। तो वैसे ही अगर एक गंत भी भगवान का चिंतन नहीं करता है तो और सेवा नहीं करता है तो ये मन फिर से, क्योंकि बहुत जन्मांतर जन्मांतर से हम इस भौतिक जगत में रहते हुए तो भौतिक कार्य में लीन थे, इसलिए सब में मान में भी है तो दिल में है, और ये इसलिए हमको निरंतर भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के चिंतन करना चाहिए तन मन वाचा से। और एक घंटा अगर नहीं करता है तो फिर से कलुषित हो जाता है, और भजन करते हुए भी और चेष्टा करते हुए भी तो जब भजन करता है फिर भी कलमाश ऊपर आ जाता है, क्योंकि बहुत कलमाश है दिल में और समय लगता है सब तो निकालने के लिए, सब कलमाश निकालने के लिए समय लगता है। और अगर ध्यान से सेवा नहीं करता है और सेवा अपराध होता है ठाकुर जी के, या नाम अपराध या वैष्णव अपराध होता है, इसका फल स्वरूप भी तो मन भावना कलुषित हो जाता है। और तो इसलिए निरंतर विनम्र भाव में रहते हुए भजन करना चाहिए। जैसे कहते हुए धीरे धीरे तो उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो और उदाहरण देता है कि यहाँ पर भी जो गंगा जल जो है, गंगा नदी है, ये पवित्र है, भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकल गए गंगा देवी। और तो इस त्रिभुवन में तो चले जाती है और जो उनके शरण में है ये शुद्ध हो जाता है। और आजकल भी आपको तो मालूम है, हम देख सकता है, देख लिया है। तो जो वहाँ पर जैसे प्रभुपाद भी उदाहरण यहाँ पर इसमें दिया है, बताता है, जैसे कलकत्ता में या हर जगह, जैसे हरिद्वार में और मायापुर में भी, सब जो वहाँ पर गंगा नदी के आसपास रहता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनके भाव भी ठीक रहता है। क्योंकि ये गंगा नदी में रोज रोज स्नान करता है एक बार कम से कम और पानी पीता है, इससे शुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी साथ ही साथ कृष्ण नाम माँ मात्र को चरण करना चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है सिर्फ गंगा स्नान लेना और गंगा पानी पीना, इससे तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी तो 24 घंटे तो है, अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए स्नान लेता है और 2-3 बार गंगा जल पीता है तो ये पर्याप्त नहीं है। कृष्णा नाम का निरंतर जप करना है, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि उत्तम अवस्था पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उत्साह तो उत्साह के साथ हमको साधन भजन करना चाहिए और निष्ठा भी होना चाहिए कि हम उत्तम अवस्था पर जरूर पहुंचेंगे, और धैर्य भी होना चाहिए क्योंकि तो सर्वोत्तम पाद जो है अवस्था, उत्तम भक्ति के अवस्था पर पहुंचना समय लगेगा और वहाँ पर भी जब पहुँचते रहना तो आसान नहीं है, तो समय लगता है, इसलिए धैर्य भाव भी रखना चाहिए। और हमेशा तो उच्च निश्चय धैर्य तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्, तो तत्त्व कर्म मतलब ये कार्य जो है नवविद भक्ति या पंच महत्वपूर्ण अंग जो है साधुसंग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, तो इसमें हमेशा लीन होना चाहिए। तो ऐसे करते हुए तो आगे जा सकता है। तो निरंतर जैसे और विनम्र भाव में रहना चाहिए, त्रिनादपि सुनिच्छिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मादनिना कीर्तनिया सदा हरि। तो ऐसे करते हुए तो जैसे प्रभुपाद भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि क्षिप्रम भवदीदार मात्मा शाश्वत अंतिम निगच्छति, भगवद्गीता के श्लोक है, जो ऐसे करता है धर्मात्मा है जो धर्म का पालन करता है, वो वास्तविक धर्म है, जैव धर्म, जीव का धर्म है, ये सनातन धर्म है, कृष्ण की सेवा है, ये वास्तविक धर्म है, परो धर्म है। जब अन्याभिलषित शून्यम ज्ञानकर्मानावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम, कोई दूसरा विनाश नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब छोड़ना है, सिर्फ कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करना है। ऐसे करते हुए भगवान संतुष्ट हो जाता है, और जब भगवान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट होंगे। कृष्ण आत्म काम है, अब तो काम है, ऐसा ना है कि अगर हम सेवन आय करते हैं तो संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण हमेशा तो संतुष्ट है, ये अनंत परम अनंत के स्रोत है। लेकिन जब देखता है कि उनके जब उनके अंश जो है, विभिन्न अंश तत्व जो है, जीवात्मा जो है, जब ये सेवा करते हैं ये संतुष्ट हो जाता है। जैसे कोई लोग है यहाँ पर, कोई पुरुष है, गृहस्थ हो, उनके पास तो बच्चे हैं, और तो अगर बच्चे घर पे अगर छोटे से बच्चे कुछ सेवा करते पिताजी के लिए तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो जाता है क्योंकि देखता है कि बच्चा के भाव अच्छा है, सेवा करना चाहता है। वैसे ही हम कृष्ण की, ये हमारे ये स्वरूप है, कृष्ण की सेवक है, दास है, और जब हम सेवा करते हैं तो ये हमारे वास्तविक स्थिति है, और जब ये करते हैं तो कृष्ण संतुष्ट हो जाता है और भी हम संतुष्ट है। और ये संबंध जो है कृष्ण के संबंध जो है कृष्ण के साथ, ये प्रेम संबंध है, तो प्रीतिपूर्वक सब कुछ करना है। जबरदस्ती की बात यहाँ पर ना है कि हमको सेवा करना चाहिए, कृष्णा तो जबरदस्ती से नहीं मांगता है, प्रेम से सेवा करना चाहिए। और तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है कैसे मालूम पड़ता है, तो उनके प्रतिनिधि जब उनके पास जाता है तो समझ सकता है कि कृष्ण क्या चाहता है हमसे और कैसे आगे जा सकता है जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। और जब आगे है तो जब शुद्ध भावना है, चित्त है, तो समझ सकता है कि कृष्ण की इच्छा क्या है और कृष्ण कैसे संतुष्ट हो जाता है। और तो इसलिए निरंतर भगवान की सेवा में लीन होना चाहिए। और ऐसे करते हुए तो आगे जा सकता है। और लेकिन जिसे यहाँ पर प्रभुपाद इंगित करता है कि शुद्ध वैष्णव जो भगवान के प्रतिनिधि है उनके पास जाना है, उनकी कृपा से तुरंत कृष्ण के पास कृष्ण की सेवा करना तो पूर्ण रूप से संभव नहीं है। अल्पमात्र से जैसे कि कोई बाहर से आता है मंदिर में दर्शन लेता है, फूल या पुष्प या कुछ भोग अगर अर्पण करता है तो भगवान भी ग्रहण करता है, लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत होना तो इसके लिए हमको शुद्ध वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि उनके पास जाना चाहिए, उनके मार्गदर्शन से हम आगे जा सकता है, शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर बताता है कि जैसे जब गंगा स्नान लेता है तो शुद्ध हो जाता है, भगवान की चरण कमलों की सेवा जब करता है शुद्ध हो जाता है, सब कलमाश तो इसका विनाश हो जाता है, वैसे ही और पहले वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि उनके पास जाना है। और यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है शास्त्र के अनुसार भी है, तो जब गुरु के पास जाता है उनके शरण में है तो जो हमारे जो कलमाश जो है तो उनकी कृपा से इसका भी नाश हो जाता है धीरे धीरे। और कहते हैं यहाँ पर दीक्षा के समय, विशेष करके दीक्षा के समय, तो गुरु क्योंकि शुद्ध वैष्णव है और जब शिष्य जब देखता है गुरु जान की ये व्यक्ति अच्छा तरह से प्रयास कर रहे हैं आगे जाने के, वो मेरे शरण में है, इसके अनुदेश अनुसार सब कुछ, मेरे आदेश के अनुसार सब कुछ कर रहा है, तो संतुष्ट हो जाता है गुरुजान। तो दीक्षा के समय तो भगवान से मतलब ये है कि वास्तव में हमारे जो संबंध कृष्ण के साथ नित्य है लेकिन सुप्त रूप में है, लेकिन जब शुद्ध वैष्णव के पास जाता है हमारे जो नित्य संबंध गुरु की कृपा से जब दीक्षा लेता है तो गुरुजान तो संबंध फिर से स्थापित कर रहा है और उनकी कृपा से तो और भगवान की कृपा से, दोनों की कृपा से तो ये वास्तविक संबंध जो हमारे हैं कृष्ण के साथ प्रकट हो जाता है, धीरे धीरे प्रकट हो जाता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। और कलमाश जो है तो दीक्षा के समय तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका विनाश भी हो जाता है दीक्षा के समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है गुरु के पास जाता है और दीक्षा लेना है इसके बाद तो कुछ खाना जरूरत नहीं है, तो सब तो जैसे पश्चिम देश में गया प्रचार करने के लिए, एक भक्त वहाँ पर था और तो मंदिर में आ गया और जब भी किया था और दीक्षा लिया और इसके बाद उन्होंने ये सोचा अभी कुछ करना जरूर नहीं है, दीक्षा मिल गया अभी तो मुक्त वास्ते पे है अभी तो जो मेरी इच्छा है मैं तो कर दूंगा, और धीरे धीरे जब भी छोड़ दिया, लेकिन ऐसे करते हुए आगे जाना संभव नहीं है। वास्तव में दीक्षा ये फिर से जब गुरु के पास जाता है, जब दीक्षा लेता है तो संबंध स्थापित हो जाता है, फिर से प्रकट हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन अच्छे तरह से गुरु के आदेश अनुसार भजन करना चाहिए। हाँ, ऐसे करते हुए आगे जा सकता है, उत्तम अवस्था पर पहुंचना है। हाँ, अन्यथा अगर अच्छे तरह से भजन नहीं करता है दीक्षा के बाद भी तो नीचे गिर जाता है फिर से, और इससे भी गुरु का थोड़ा सा कष्ट भी मिलता है। इसलिए यहाँ पर भी ये प्रभुपाद उन्होंने लिखा है कि ये महाप्रभु ने भी बोला था कि गुरु को तो देखना है और ज़्यादा शिष्य बनाना तो वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि जो अगर अच्छे तरह से पालन नहीं करता है शिष्य तो इसका जो फल जो होता है, अगर पाप करता है अगर शिष्य तो भक्ति मार्ग छोड़ देता है और गलत काम कर रहा है, इसका भी थोड़ा सा फल तो ये गुरु के पास भी पहुंचता है। लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव है इसका को ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कष्ट तो मिलता है इसके फल स्वरूप। लेकिन क्योंकि शरणागत है इसलिए समस्या का जो होता है इसका पार करता है आसानी से, लेकिन फिर भी कुछ कष्ट मिलता है। लेकिन जो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, और इसलिए शुद्ध वैष्णव भी 1,000-10,000 अगर शिष्य है उनके लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर जैसे अलग अलग तो गुरु तो शायद गुरु है लेकिन नित्य सिद्ध परिकार जो है ये कभी उनकी गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर दूसरे है जो सदना सीधा है, सनक के द्वारा उत्तम अवस्था पर पहुंचता है भाव अवस्था पे, तो लेकिन अगर ज़्यादा शिष्य अगर बनाता है और ये अच्छे तरह से नहीं पालन करता है तो गिरने का भी संभावना है। तो इसलिए सावधानी से रहना चाहिए गुरुजान के भी, इसलिए यहाँ पर इंगित किया है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए शिष्य के कर्तव्य भी है कि दीक्षा के बाद भी अच्छा तरह से शरण भजन करना है, अपराध ना करना, ऐसे करते हुए आगे जा सकता है, और ऐसे करते हुए भी कष्ट नहीं मिलते गुरुजान। जैसे एक उदाहरण के लिए भी, तो अगर कोई शिष्य है गुरुजान के अगर लड़ाई करता है बीच में, तो इसके बाद ये बात तो गुरु के पास तो पहुंचता है, और इसके बाद तो गुरुजान तो सेवा में लीन है, प्रचार में लीन है, लेकिन अगर शिष्य तो विनम्र भाव में नहीं रहता है, लड़ाई भी करता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा कष्ट भी मिलता है गुरुजान, और समय निकालना पड़ेगा इसके जो समस्या निकालने का। तो इसलिए सावधानी से रहना चाहिए, विनम्र भाव में रहते हुए साधन भजन करना चाहिए जिससे हम आगे जा सकता है, और जिससे तो पूरा जो आंदोलन जो है अच्छे तरह से इसके विकास हो जाता है। और इसे करते हुए तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी और कि पूरे विश्व ये महामंत्र कृष्ण भावना फैल जाए, और प्रभुपाद के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरह से हो गया है, लेकिन हमको आगे जाना है। खुद स्वयं अपना आप तो हमको देखना है कि अच्छे तरह से भजन करे और दूसरे के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करे, ऐसे का तो आगे जा सकता है और दूसरे की सहायता भी कर सकता है। तो हमने कुछ सीख लिया है तो दूसरे को भी बताना है, प्रचार भी करना है, किताब का भी तरंग करना है, प्रसाद का भी तरंग करना है, दूसरे को भी जो हमने मिला है दूसरे को भी देना है। तो ऐसे करते हुए आगे जाना है और ऐसे करते हुए उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है श्री गुरु गौरांगा और कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्णा। ग्रंथ नारायण श्रीमद्भागवताम की, श्री प्रभुपाद की, श्री गोनिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा महाप्रसाद है, तो लाइन बना के और पुरुष यहाँ पर स्त्री वहां पर आइए, लाइन 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 लाइन, ठीक है, अन्यथा तो मुश्किल हो जाता है।